सो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, न मे भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेया प्रति जाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, कि भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि हे कौन्तेया, हे अर्जुन, तुम जाके घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, है ना। सो ये हम देखते हैं स्वयं पांडवों के प्रसंग में, हम देखते हैं भगवान ने अनेक विपदाओं से पांडवों की रक्षा की, लेकिन विशेष रूप से हमें ये देखने को मिलता है प्रहलाद महाराज के प्रसंग में। हाँ, तो आप सब जानते हैं प्रहलाद महाराज के पिता का नाम क्या है, हिरण्यकशिपु, है ना। सो हिरण्यकशिपु का एक भाई भी था छोटा, उसका नाम था हिरण्याक्ष, है ना। तो भगवान ने वरा रूप में उसका वध किया था हिरण्याक्ष का, तो हिरण्यकशिपु को बहुत नफरत थी भगवान से, तो वो ढूंढ रहा था हर जगह लड़ने के लिए, भगवान को ढूंढ रहा था वो। तो भगवान उसके हृदय में जाके बैठ गए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो असुर होते हैं वो कभी अपने हृदय में झांक के नहीं देखते, बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं चीजों को। तो क्योंकि हिरण्यकशिपु बहुत, वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट था वो, और वेदों की पूरी उसको जानकारी थी उसको, लेकिन वेदों को पढ़ने के बाद उसने उसका निष्कर्ष गलत निकाल दिया। तो ऐसा कैसे हो गया कि वेदों को पढ़ा और गलत मतलब निकाल लिया उसने, नहीं। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे पर बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, नहीं, तो उसमें कुछ पेड़ जो है वो मीठे फल देते हैं और कुछ पेड़ कड़वे फल देते हैं, और लेकिन दोनों तरह के पेड़ पानी कहाँ से पी रहे हैं, पानी गंगा जी का ही पी रहे हैं वो, है ना। लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है कि गंगा जी का पानी पी लिया फिर भी कड़वाहट दूर नहीं हुई, है ना। तो वेदों की जानकारी थी हिरण्यकशिपु को, लेकिन गलत कॉन्क्लूजन निकाल रहा था, गलत निष्कर्ष निकाल रहा था, और इसीलिए वो भगवान से ईर्ष्या कर रहा था, भगवान को मारना चाह रहा था वो, है ना। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने सोचा कि चलो मैं जाके सारे देवी देवताओं को तो पहले भगा चुका था वो, सिर्फ ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी, ये तीन उससे नहीं डर रहे थे, बाकी तो मतलब सारे देवी देवता थर थर कांप रहे थे हिरण्यकशिपु के सामने। तो हिरण्यकशिपु सूर्य को कहता था भैया 22 डिग्री टेम्परेचर कर दे, तो ये सूर्य है वो 22 डिग्री टेम्परेचर कर देता था, नो क्वेश्चन आस्क्ड, क्यों करूं, कब करूं, बस बोल दिया कि भैया टेम्परेचर घटा दे, ये वाला टेम्परेचर चाहिए। और अगर इंद्र को बोला कि यार इस टाइम से इस टाइम के बीच में इतनी बारिश कर दियो, हाँ जी सर, ठीक है, ओके, उतनी बारिश करेगा वो, बात खत्म, है ना। आम के पेड़ को कह दिया भैया जरा सेब दियो दो चार, वो सेब उगेंगे उस पे, है ना। और ऑफ सीजन है, सीजन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब पूरा कंट्रोल कर लिया था हिरण्यकशिपु ने, सारे लोग मतलब थर थर कांप रहे थे उसके सामने, हिरण्यकशिपु के सामने। तो हिरण्यकशिपु ने कहा चलो जाकर थोड़ा सा तपस्या करके आता हूं, तपस्या करने गया, पीछे से इंद्र को मौका मिल गया, उसने सारे देवी देवताओं को इकट्ठा कर लिया, चलो भैया वो तो अपना कर्म फल भोग रहा है हिरण्यकशिपु, चलो चढ़ाई कर देते हैं उसकी राजधानी में। सारे असुरों को मार के भगा दिया उन्होंने, है ना। सारे असुर जब भाग गए तो महल की तलाशी ले रहा था इंद्र, तो महल में कौन मिला उसको, सो महल में उसको हिरण्यकशिपु की गर्भवती स्त्री मिल गई उसको पत्नी, उसका क्या नाम था? कयाधु, है ना, कयाधु है ना। सो पकड़ लिया उसको और पकड़ के घसीटते हुए लेके जा रहा था, और घसीटते हुए लेके जा रहा था, रास्ते में नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? तो इंद्र ने कहा कि इसके, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, आपको शायद पता नहीं है, और गर्भवती है, इसका मतलब इसके गर्भ में कौन है? हिरण्यकशिपु की संतान है। तो जितना बड़ा राक्षस हिरण्यकशिपु है वैसा ही बेटा भी निकलेगा, तो कहां लेके जा रहे हो? इसको ले जा रहा हूं, बंदी बना के रखूंगा, और जब इसकी संतान उत्पन्न हो जाएगी तो उसका वध कर दूंगा, है ना। कंस ने भी ऐसा ही किया था, कंस को भी तो बोला था, भविष्यवाणी हुई थी कि देखो आठवां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तो पकड़ लिया देवकी को, बंदी बना लिया। फिर वसुदेव ने बोला, आठवां पुत्र है ना, अभी से क्यों परेशान हो रहे हो भैया, देखेंगे आठवां पुत्र, पता नहीं होगा नहीं होगा, तुम ऐसे टेंशन ले रहे हो, किसने देखा है? नहीं तो छोड़ दिया। तो नारद ऋषि ने सोचा कि यार बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे, तो जाके उसको हवा भर के आए उसमें, कम्स में, कम्स में हवा भर के आए कि अरे गोल चक्कर में कौन पहला कौन आठवां, गोल चक्कर है, गोल चक्कर में आठ बंदों को खड़ा कर दो, अब कौन सा पहला कौन सा आठवां है? क्या भैया बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, कोई रिस्क मत लो, जो पैदा हो मार देना, है ना। तो आप देखो कि कम्स, इंद्र, कम्स कितना बड़ा राक्षस था, इंद्र की कितनी दुश्मनी थी हिरण्यकशिपु से, फिर भी गर्भपात नहीं किया कभी भी, नहीं वेट कर रहे थे, है ना। तो आप सोचो जो गर्भपात कर रहे हैं कितना, मतलब कम से भी गए गुजरे हैं बेसिकली वो लोग, ऐसे नहीं जो गर्भपात कर रहे हैं। सो नारद जी ने कहा, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है भैया, इसके जो ये स्त्री है इसके गर्भ में बहुत महान भक्त हैं भगवान के, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। तो कहाँ छोड़ूं? मेरे पास छोड़ दो, मैं अपने आप रक्षा कर लूंगा। तो नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में लेकर गए, है ना। सो आश्रम में रखा और उसको शिक्षा दे रहे थे, है ना। तो यहां पर अब प्रभुपाद एक प्रश्न उठाते हैं, आप भागवतम पढ़ेंगे तो प्रभुपाद प्रश्न उठाते हैं कि आखिर नारद जी ने उसको अपने आश्रम में क्यों रखा, मतलब आदेश है शास्त्रों का कि किसी भी स्त्री के साथ में एकांत में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो नारद जी को डर नहीं लगा, उन्होंने क्यों कयाधु को अपने आश्रम में रखा, नहीं रखना चाहिए था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो रूल्स हैं, ये जो महाभागवत है, दिव्य जो व्यक्तित्व वाले लोग हैं जैसे नारद जी, उन पे लागू नहीं होते। और श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया हरिदास ठाकुर का, तो उन्होंने बताया जब हरिदास ठाकुर अकेले रह रहे थे, भजन कर रहे थे, तो वहां पे एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था, उसने एक वैश्या को भेजा, उनका मन विचलित करने के लिए हरिदास ठाकुर का। तो वैश्या ने उसको बोला, जाके हरिदास ठाकुर को बोला वैश्या ने कि मैं आपका संग करना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे संतुष्ट कीजिए। तो हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है आप बैठो, मैं थोड़ा, मेरा आज जप रह गया है, मैं जप कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं, आप जैसी आपकी इच्छा होगी मैं वैसा व्यवहार करूँगा। तो वैश्या बैठी रही, पूरा रात जप करते रहे वो, है ना, हमारे लिए दो घंटे भी जप करना मुश्किल है, लेकिन हरिदास ठाकुर पूरी रात जप करते रहे। तो सुबह हो गई, तो उन्होंने बोला अभी तो टाइम खत्म हो गया, मुझे बहुत अफसोस है, कि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, आप प्लीज कल आइए, मैं कल आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो ऐशा कल आई और बहुत सज संवर के आई और बहुत ही उत्तेजित किसी भी व्यक्ति को कर दे ऐसे वस्त्र पहने हुए थे उसने। हरिदास ठाकुर ने कहा ओहो आज भी मेरी माला रह गई है। 3 दिन ऐसे चलता रहा। हाँ, तो वैश्या वहां बैठी थी हरिदास ठाकुर के पास। तो हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे तो वैश्या क्या कर रही थी? वैश्या वो जप सुन रही थी, है ना। तो शुद्ध भक्त के मुख से जब वैश्या ने हरिनाम सुना तो उसका जो है चित्त निर्मल हो गया उसका। तो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरी, माफी मांगी। उन्होंने बोला मैं तो आपका पतन करने आई थी, मैं कितनी बड़ी अभागी हूं। तो हरिदास ठाकुर ने बोला मुझे पता है, जब तुम आई थी मुझे तभी से पता है, मैं उसी समय भी यहां से जा सकता था लेकिन आपके कल्याण की इच्छा से मैं यहां से नहीं गया। अब तुम यहीं पे रहो और इस कुटिया को तुम संभालो, मैं कहीं और जाता हूं। तो प्रभुपाद ने बोला जैसे हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो महापुरुष हैं, भगवान के महान भक्त हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे रामानंद राय है ना, रामानंद राय इतने महान भक्त थे और बिल्कुल भी जो काम वासना उनको छू कर भी नहीं गई थी रामानंद राय को। नहीं, आपने पढ़ा है रामानंद राय के बारे में? नाम सुना है किसी ने रामानंद राय का? कितने लोगों ने नाम सुना है? अच्छा, सो रामानंद राय की सेवा थी पुरी में कि वो जगन्नाथ जी के लिए एक नाटक की डायरेक्शन करते थे वो, और उस समय देवदासियां हुआ करती थी, है ना। देवदासियां हैं, मंदिर को डोनेट कर देते थे लोग और उनका काम होता था भगवान की सेवा के लिए नृत्य इत्यादि करना। तो रामानंद राय अपने हाथ से जो देवदासियां हैं उनका श्रृंगार करते थे, लेकिन उनके मन में एक क्षण के लिए भी उनका मन कभी विचलित नहीं होता था। ऐसे लगता था जैसे लकड़ी की पुतलियों को सजा रहे हो, इस भाव से करते थे। पूरा नियंत्रण था उनका अपने मन के ऊपर, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के द्वारा सिखाया कि मन पर नियंत्रण क्या चीज होती है ना। सो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो जो महापुरुष होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि कैसी परिस्थिति है, वो लोक कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता कि कयाधु जो है नारद जी के आश्रम में रह रही थी। खैर जब वो नारद जी के आश्रम में रह रही थी, नारद जी सुबह शाम उसको भगवत ज्ञान सुना रहे थे। तो भगवत ज्ञान दो व्यक्ति सुन रहे थे, एक कयाधु और दूसरा प्रहलाद महाराज, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने बाद में अपने फ्रेंड्स को बोला, जब अपने मित्रों को वो ज्ञान दे रहे थे गुरुकुल में और वहां पर भगवत ज्ञान दे रहे थे अपने फ्रेंड्स को, तो उनके दोस्तों ने पूछा भाई तू भी यहीं पर है, हम भी यहीं पर हैं, तू ये बातें कहां से सीख गया भैया, हमने तो आज तक नहीं सुनी। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं जब माँ के गर्भ में था तो उस समय ये बातें जो है नारद जी ने बताई थी मेरे गुरु ने, समय के प्रभाव से मेरी माँ उसको भूल गई लेकिन मुझे याद है, मैं नहीं भूला इस बात को, है ना। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने बोला अपने मित्रों को, कुमार आगे कुमार प्राज्ञो आचरे, कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बचपन से ही भक्ति में जुड़ जाते हैं, क्योंकि बचपन में माइंड जो है बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत शार्प होता है बचपन में, और कोई भी बात सुन लो तो तुरंत दिमाग में स्टोर हो जाती है वो बात, नहीं याद हो जाती है वो बात। अभी हम कई बार सुनेंगे तो फिर भी समझ में नहीं आती, भूल जाते हैं, लेकिन एक बच्चा कोई बात सुनेगा तो याद हो जाती है उसको, है ना। सो प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे थे तो उनकी शिकायत पहुंच गई राजा के पास। राजा कौन था? हिरण्यकशिपु, उसका पिता। तो हिरण्यकशिपु ने बुलाया कि यार क्या कर रहा है भाई तू, असुर का, असुर राज का बेटा है ये ऐसे बातें करेगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, है ना। तू तो ये सीख के भैया संसार पे राज कैसे करना है, देवी देवताओं को कैसे मारा जाता है, ये चीजें सीख। तू कहाँ ये चक्कर में पड़ गया। तो प्रहलाद महाराज उन्होंने दोबारा गुरुकुल में भेजा कि जाओ अच्छे से शिक्षा लो, और जो उनके शिक्षक थे उनको बुलाया और डांटा कि बेटा भलाई चाहता है ना, अच्छे से पढ़ाइयो। गुंडे वाली भाषा थी। कि अगर तूने ठीक से नहीं पढ़ाया तो भैया काम हो जाएगा। तेरा शुक्राचार्य के बेटे थे, है ना, जो पढ़ा रहे थे प्रहलाद महाराज को। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, हम पूरी मेहनत करेंगे, पता नहीं कहाँ से सीख लिया, पता नहीं कैसे गलत संग में पड़ गया, ये भगवत ज्ञान सुना रहा है ना, हम ध्यान रखेंगे, नजर रखेंगे। तो कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यपु ने कहा चलो टेस्ट लेता हूँ, क्या समाचार है, क्या कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं हुई। तो उन्होंने बुलाया प्रहलाद महाराज को, पूछा कि भाई कुछ बताओ। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि आपको इस भौतिक जगत रूपी अंधकूप में नहीं रहना चाहिए, हाँ सब कुछ छोड़ो, जंगल में चले जाओ और हरि भजन करो। हिरण्यकश्यपु को आग लग गई, उठाकर जमीन पे पटक दिया। बोले दुष्ट, कहां से पैदा हो गया तू, कुल नाशक। क्या बोलते है? कलंक है तू हमारे कुल पे। सो कहां से सीखा है तूने, ये गलत विचार तेरे दिमाग में किसने डाल दिया, तू असुर का बेटा है। और बुलाया अपने सैनिकों को, बोला इसको जहर खिला दो, मार दो इसको, ये मर जाए तो अच्छा है। तो जहर खिला दिया प्रहलाद महाराज को, कुछ नहीं हुआ, टॉफी की तरह खा गए जहर को। नहीं तो उन्होंने देखा यार कुछ हुआ ही नहीं इसको, मतलब सांपों से डसवाओ, सांपों से डसवा दिया कुछ नहीं हुआ, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया कुछ नहीं हुआ, पहाड़ से नीचे गिरवा दिया कुछ नहीं हुआ, पत्थर बांध के समुद्र में गिरा दिया कुछ नहीं हुआ, आग में जला दिया हाथी के पैर तले, मतलब तीरों से पूरा छलनी कर दिया, कुछ हो ही नहीं रहा। दोबारा सामने लेके आ गए सिपाही, बोल रहे हैं महाराज सब कुछ करके देख लिया, पता नहीं क्या चक्कर है, कुछ हो ही नहीं रहा इसको। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा अरे पूरा 14 भुवन तीनों लोक मेरे नाम से थर थर कांपते हैं, तू डर ही नहीं रहा यार, तेरे में इतनी ताकत कहां से आ गई। तो प्रहलाद महाराज ने कहा मुझ में ताकत वहीं से आ रही है जहां से आपको आ रही है, आपकी और मेरी ताकत का एक ही स्रोत है कृष्णा। कहां है कृष्णा, वो तो कण कण में है, तो क्या इस पिलर में भी है, इस स्तंभ में भी है? हाँ इस स्तंभ में भी है। अब प्रहलाद महाराज ने बोल दिया इस स्तंभ में है, जब शुद्ध भक्त बोल दे हैं तो मतलब हैं, है ना। तो उसने गदा उठा ली अपनी, उसने कहा कि अगर इस स्तंभ में है, इस स्तंभ को ही तोड़ देता हूं, और स्तंभ को तोड़ दूंगा तो तेरा भगवान भी मर जाएगा। और जैसे स्तंभ पे प्रहार किया वो बहुत तेज गड़गड़ाहट हुई। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा इतनी तेज तो नहीं मारा था मैंने, आखिर क्या हुआ। तो एकदम जो वो स्तंभ फाड़कर भगवान प्रकट हो गए, नरसिंहदेव भगवान की। सो हिरण्यकश्यपु ने जब तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे कि दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, बंदर से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं, घर के अंदर नहीं मरूं, घर के बाहर नहीं मरूं, बहुत सारे किसी हथियार से नहीं मरूं, बहुत सारे वरदान मांग लिए थे उसने, अपनी तरफ से पूरा अपने आप को कवर कर लिया था उसने, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी के सारे वरदान पूरे करते हुए नरसिंह अवतार लेकर, तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने नरसिंह अवतार उसी समय लिया। नरसिंह भगवान नित्य है, शाश्वत है, सदैव जो है नरसिंह भगवान विराजमान है, उनका अपना लोक है नरसिंह लोक, वहां पे हमेशा वो विराजमान रहते हैं और लक्ष्मियां उनकी संभ्रम सेव्यमानम, उनकी बहुत ही सेवा, बहुत ही आदर के साथ उनकी सेवा में रत रहती है। तो भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उन्होंने सारे जहां से अच्छा क्या है हिंदुस्तान में, सारे जहां से अच्छा है, क्या बात है, इतनी डस्ट है यहाँ पर, नहीं पॉल्यूशन, भ्रष्टाचार, क्या है मतलब सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं, जब हम पाकिस्तान पैदा हो जाएंगे अगर ऐसे चलते रहे तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, फिर बोलेंगे सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, नहीं। सो भगवान ने सारे वरदान पूरे किए ब्रह्मा जी के और उसके साथ खेले थोड़ी देर, हिरण्यकश्यपु के साथ उसको पकड़ते थे फिर छोड़ देते थे, फिर दोबारा पकड़ लेते थे छोड़ते थे, देवी देवता परेशान हो गए, देवी देवता सोच रहे थे कि भगवान को अंदाजा नहीं है कि हिरण्यकश्यपु कितना ताकतवर है। प्रॉब्लम ये थी कि उनको भगवान की शक्ति का अंदाजा नहीं था। जब विभीषण आया था भगवान की शरण लेने के लिए, तो अब वो राक्षस था तो राक्षस ही दिख रहा था, नहीं जो जैसा है वैसे ही दिखेगा ना, तो आया तो उसको पकड़ लिया सबने, हनुमान जी, सुग्रीव आदि सब, जामवान सबने पकड़ लिया उसको और भगवान राम के सामने ले आए। भगवान राम ने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला विभीषण से तुम क्यों आए हो यहां पर, बोला मैं आपकी शरण लेने आया हूं, मुझे आप शरण दीजिए। तो भगवान राम ने पूछा सबसे कि क्या करना है, तो कुछ लोगों ने बोला कि शरण लेने आए शरण दीजिए, तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि है तो राक्षस ही हमारे बीच में रहेगा, हम लापरवाह हो जाएंगे इसके प्रति कुछ टाइम के बाद, तो ये कभी भी हमें हानि पहुंचा सकता है। तब तक भगवान राम सबकी बात सुन रहे थे, तो भगवान राम ने फिर भगवान को बोलना पड़ा मजबूरी में, भगवान राम को, आप रामायण पढ़िए, रामायण में कितने श्लोक हैं, आप जब तक मैं बताऊंगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा। रामायण में 100 करोड़ श्लोक है, 100 करोड़ श्लोक, मध्वाचार्य तात्पर्य निर्णय में बता रहे हैं 100 करोड़ श्लोक है रामायण में, लेकिन अभी सिर्फ 24 हजार ही उपलब्ध है ना, बाकी के 99,76,000 श्लोक जो हैं लुप्त हो चुके हैं, अभी मनुष्यों को उपलब्ध नहीं है, है ना, कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। सो भगवान राम ने कहा कि मैं अपनी भ्रुकुटी के एक इशारे से पूरा ब्रह्मांड नष्ट कर सकता हूं, इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तुम लोग जानते नहीं हो भी मुझे। तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, भगवान के साथ हैं सारे लोग, फिर भी मतलब ये आशंका जता रहे हैं कि कोई भगवान को कुछ नुकसान पहुंचा देगा, भगवान को कोई माइका लाल नुकसान नहीं पहुंचा सकता, है ना। तो सब देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे भगवान प्लीज रात होने वाली है, रात में असुरों की शक्ति बढ़ जाती है, तो आप प्लीज ज्यादा मत खेलिए, इसको मार दीजिए, भगवान पे भरोसा नहीं है, देख लो नहीं। सो जैसे ही संध्या का समय हुआ, भगवान नरसिंह देव ने उसको अपनी जगह पर बिठाया, ना आसमान में ना जमीन पर, और चौखट पर बैठ गए महल की, ना अंदर ना बाहर, हाँ, और अपने नाखूनों से, जो नाखून है वो ना जीवित है ना मरे हुए हैं, नहीं, अगर आप काटो तो दर्द नहीं होता, इसका मतलब जीवित नहीं है, लेकिन बढ़ते रहते हैं, इसका मतलब मरे भी नहीं हुए। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा था कि ना कोई जीवित वस्तु मुझे मार सके और ना ही कोई मृत वस्तु, तो भगवान ने अपने नाखूनों से मार दिया जो ना जीवित है ना मृत है। दलिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम, मच्छर की तरह मार दिया, है ना, ऐसा नहीं कि एक बलवान आदमी ने कमजोर आदमी को मार दिया, हाँ, एक बलवान आदमी ने मच्छर को मार दिया, तनु भृंगम, जैसे मच्छर को मारते हैं, कुछ डर नहीं है, कुछ नुकसान पहुंचा देगा, कुछ ऐसा डर नहीं है किसी भी तरह का, तो उसको मार दिया हिरण्यकश्यपु को। तो प्रहलाद महाराज उनके सामने गए, बहुत गुस्से में थे क्योंकि अभी लड़ाई करके चुके थे, देवी देवता उनके सामने नहीं जाना चाह रहे थे, क्या पता भस्म ही ना कर दें, और अगर गलती से एक थप्पड़ अप्पड़ लगा दिया उन्होंने तो भैया बराबर काम सारा। ब्रह्मा जी तक उनके सामने जाने से डर रहे थे, लक्ष्मी जी उनके सामने नहीं जा रही, जो उनके हृदय में विराजमान है, हृदय पर विराजमान है। तो प्रहलाद महाराज उनके सामने गए, प्रहलाद महाराज को देखते ही भगवान का सारा जो गुस्सा है छुमंतर हो गया, वात्सल्य भाव में आके उसको अपनी गोदी में बिठा लिया। तो प्रहलाद महाराज ने क्वेश्चन पूछा, बहुत स्तुति की भगवान की, आप भागवतम पढ़िए, बहुत सुंदर स्तुतियां हैं, प्रहलाद महाराज ने बहुत स्तुति की, और प्रहलाद महाराज ने क्वेश्चन पूछा उनसे, ये जो प्रसंग है ये हरिभक्ति विलास में वर्णित है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं आपका भक्त कैसे बन गया, आप प्लीज मुझे बताइए, मैंने आखिर ऐसा क्या किया था कि मैं आपका भक्त बन गया और आपको मेरी रक्षा के लिए यहां पे आना पड़ गया, ऐसा क्या काम किया था मैंने, नहीं, अच्छा प्रश्न है, नहीं है कि नहीं, अच्छा प्रश्न। तो नृसिंह भगवान ने कहा, तुम पिछले जन्म में अवंतीपुरा में एक ब्राह्मण था वसु शर्मा, उसके पुत्र थे, उसके पांच बेटे थे, तुम सबसे छोटे थे, तुम्हारा नाम था वसुदेव, और तुम एक वैश्या के प्रति आसक्त थे, जो तुम्हारे पिता थे रोज यज्ञ करते थे, तुमने कभी यज्ञ नहीं किया, कभी पूजा पाठ नहीं की, तुम शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, उल्टे सीधे काम करते थे। तो एक बार तुम उस वैश्या के साथ पिकनिक मनाने गए तो बहुत सारा खाने पीने का सामान लेके पिकनिक बास्केट बना के गए, तो एक खंडर था, खंडर के पास पहुंचे तो उनको लगा बहुत रमणीय स्थान है, तो वहां पे साफ सफाई की और वहीं पर बैठ गए, और पता नहीं क्या बात हुई, दोनों के आपस में लड़ाई हो गई, किसकी, वसुदेव और वैश्या की, है ना, लड़ पड़े आपस में, और लड़े भी ऐसे कि ज्यादा ही लड़ गए कुछ, है ना, वो टोकरी भी साइड पे फेंक दी, एक दूसरे से बात नहीं की, भूखे प्यासे बैठे रहे मुंह सुजा के, पूरी रात बीत गई ऐसे ही। तो प्रहलाद महाराज ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो उन्होंने भगवान नरसिंहदेव ने बोला जो तुमने वो खंडर था जिसकी तुमने सफाई की थी वो पहले मेरा मंदिर था, वो तुमने सफाई की तो भगवान की सेवा हो गई। और क्योंकि तुमने उस दिन पूरी रात कुछ नहीं खाया तो मैंने व्रत के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। हालांकि वसुदेव ब्राह्मण ने व्रत रखा नहीं था, भगवान के बारे में सोच के व्रत नहीं रखा था, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया उसको। नहीं, कितने दयालु हैं। इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बोल रहे हैं कि ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर कहाँ जाएं, क्या करें। कोई बेवकूफ होगा, कोई आत्महत्या, पानी, कोई आत्महत्या करने का इच्छुक ही होगा जो ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। नहीं, तो भगवान ने कहा कि इस फल से तुमने जो अनजाने में व्रत कर लिया था उस फल के कारण जो है तुम मेरे भक्त बन पाए, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने पूछा वैश्या का क्या हुआ है, आपके आप भी सोच रहे हो वैश्या का क्या, या सिर्फ मैं ही सोच रहा हूं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा तो भगवान वो वैश्या का क्या हुआ। तो उन्होंने बोला वैश्या जो है वो शरीर छोड़ने के बाद अप्सरा बन गई और हजारों साल सुख भोगने के बाद मेरे धाम चली गई और तुम भी अब मेरे धाम चले जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, है ना। थैंक यू। इसलिए आप सबको कल अवश्य व्रत रखना चाहिए, है ना। कुछ भी दिक्कत हो, तकलीफ हो, व्रत रखो भगवान का, है ना। और व्रत भी एकादशी का व्रत है, भूख लगे, प्यास लगे, थोड़ा पानी वानी पी लो, फल खा लो। अगर बिल्कुल निर्जल रह सको तो निर्जल रहो, कम से कम शाम के 6-7 बजे तक, 5-6 बजे तक, ठीक है ना, जब तक जब भगवान प्रकट हुए तब तक। तो प्रश्न उठ सकता है कि हम लोग तो राधा कृष्ण के भक्त हैं तो हम नरसिंह भगवान की पूजा क्यों करें। नहीं, तो हमें हम नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि नरसिंह भगवान जो है वो भक्ति विघ्न विनाशक है। भक्ति में जितनी भी बाधाएं आती हैं, जितने भी विघ्न प्रॉब्लम्स आती हैं, इम्पेडिमेंट्स ऑब्स्टिकल्स आती हैं, भगवान नरसिंहदेव उसको दूर करते हैं, है ना। तो हमें अच्छे से आप सबको व्रत करना चाहिए कल और भगवान नरसिंहदेव की पूजा आरती करना चाहिए। और इस्कॉन मंदिर में प्रोग्राम होगा 5 से 9, उसमें अवश्य आप लोगों को भाग लेना चाहिए। वहाँ पे आपको भगवान नरसिंहदेव के बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में और बहुत सारी बातें बताई जाएंगी आपको, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हमें नरसिंह अवतार के बारे में देखने को मिलता है, है ना। एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के पास बैठे थे और श्रीवास पंडित को उन्होंने बोला कि मुझे विष्णु सहस्त्र नाम सुनाओ। तो जो विष्णु सहस्त्र नाम सुना रहे थे तो उसमें नाम आया नरसिंहदेव। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंहदेव नाम सुना वैसे वो नरसिंह भगवान के भाव में आ गए, एकदम बाल खड़े हो गए, आंखें लाल हो गई और उन्होंने भाला उठा लिया और बहुत गुस्से में हुंकार करने लगे और बाहर निकले नवद्वीप की गलियों में और भाला लेके लोगों के पीछे भागे मारने के लिए। सारे लोग उनको देख के तितर बितर हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा लोग डर रहे हैं तो उनको बहुत ग्लानी हुई, वापस आ गए वो शिवास पंडित के पास। और शिवास पंडित को बोला, ऐसी मैंने बेकार में लोगों को डरा दिया, अच्छी बात नहीं है, है ना, अच्छा नहीं किया मैंने। तो शिवास पंडित ने बोला कि आपका नाम भर लेने से लोगों के करोड़ों जन्म के पाप कट जाते हैं, जिन भी भाग्यशाली लोगों ने आपके इस स्वरूप के दर्शन किए हैं उनका परम कल्याण हो गया। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए, चैतन्य महाप्रभु की, है ना। सो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कल ही भगवान नरसिंह की आरती करनी चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो रोज वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे, नरसिंह द्वार से होकर जाते थे, है ना। आप सब जो भी पीछे गए थे आप सब ने देखा होगा, और जब चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो नरसिंह आरती गाते हुए जाते थे, है ना। तो अभी हम प्रवचन के बाद नरसिंह आरती गाएंगे, आप सब भी साथ में गाना। और कल आप सब लोग प्लीज व्रत रखिए नरसिंह भगवान की प्रसन्नता के लिए, और प्रार्थना कीजिए कि वो आपको बल दें ताकि आप भक्ति में आगे बढ़ सको। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।